તારીખ 28/7/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 170 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 680
170મો પત્ર ચાલે છે. છેલ્લે પાનું 250 પાને છેલ્લું વચન એ કહ્યું. સુભાગભાઈને સૂચના કરી છે કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું એટલે પુરુષાર્થ તીવ્ર કરવો. જેમ યુવાન માણસ વધારે કામ કરી શકે છે એમ જોરથી પુરુષાર્થ કરવો. પોતે અલખ વાર્તાના એટલે આત્મવાર્તાના અગ્રેસર છે એટલે મુખ્ય છે, આગળ છે, એની પાસે અગ્રેસર થવું એટલે મુખ્ય થવું અને વિશેષ લાયકાતવાળા થવું. ભલે આ થોડું લખ્યું પણ ઘણું કરીને જાણશો એમ કહ્યું. એ સૂચના તમને ટૂંકી આપી છે પણ આત્મકાર્ય માટે તમે શીઘ્ર પુરુષાર્થ કરો. હા, બાત વો ચલતી થઈ કે ઉન્હોને એક સૂચના કર દીએ કે આપ અપની યોગ્યતા પુરુષાર્થ સે બઢાઓ. ભલે સંક્ષેપ મેં લિખા હૈ લેકિન ઉસકો લાઇટલી નહીં લેના. થોડું લખ્યું ઘણું કરીને જાણજો તો અલ્પ લિખા હૈ, થોડા લિખા હૈ, લેકિન ઉસકો બહુ જ સમજના, મેને ઉસકો વજન દેના, હલકે સે નહીં લેના. એસા અભિપ્રાય કહેને કે પીછે અબ આગે લિખતે હૈ. ગુંઠાણાએ સમજવા માટે કહેલા છે 14 ગુણ સ્થાન, કર્ણાનું યોગ કા વિષય હૈ. 14 ગુણ સ્થાન કર્ણાનું યોગ કા વિષય હૈ. કિસ કિસ ગુણ સ્થાન મેં કેસે કેસે શુભ શુદ્ધ અશુદ્ધ કેસે કેસે પરિણામ કી સ્થિતિ હોતી હૈ ઉનકા વર્ણન કિયા હૈ. જીવ મુમુક્ષુ પહેલા ગુણ સ્થાન મેં ખડા હૈ. और ऊपर के जो गुणस्थान हैं आराधना के, चतुर्थ गुणस्थान से आगे के, सबसे वो आगे आएगा तो चतुर्थ गुणस्थान में आएगा पहले गुणस्थान में से. तो उसको प्रयोजन तो चतुर्थ गुणस्थान में कैसे प्रवेश करना उतना ही है. पंचम गुणस्थान और छठा सातवां और ऊपर के गुणस्थान का कोई प्रयोजन नहीं है. तो वो तो बात समझने की है, કોઈ ઇસકી આરાધના કરને કા અવસર તો ખુદ કો હૈ નહીં. સમજને કે મતલબ આદરને કે યાને પ્રયોગ કરને કા વિષય વો નહીં હૈ. કે પંચમ ગુણસ્થાન મેં ઉતના ત્યાગ હોતા હૈ તો હમ કરે, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાન મેં ઉતના ત્યાગ હોતા હૈ તો કરે, ઉપર મેં ગુણસ્થાન મેં એસા શુક્લ ધ્યાન હોતા હૈ તો હમ ધ્યાન શુક્લ ધ્યાન લગાએ, વો કોઈ પરિસ્થિતિ હૈ નહીં. तो एक तो प्रयोजन भूत जो बात है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए और सब बात समझने की है. समझने की मतलब समझ करके गौण करने की है, इसका नाम समझने की है. समझ करके मुख्य करना वो दूसरी बात हो गई, वो आदरने की बात हो गई. और मात्र समझने की मतलब गौण करने की है. उसमें भी एक परमार्थ है, इतने वचन में भी एक परमार्थ है કે વર્તમાન કાલ મેં સજીવન મૂર્તિ કા યોગ એક ચતુર્થ ગુણસ્થાન વાલે કા હી સંભવિત હૈ. મુનિરાજ કા ઓર તીર્થંકરો કા કોઈ જમાના અભી દિખને મેં નહીં આ રહા હૈ. ઓર જબ ચતુર્થ ગુણસ્થાન વાલે સજીવન મૂર્તિ કી પહેચાન હોતી હૈ તો ઉસમેં પરમેશ્વર બુદ્ધિ આતી હૈ. જબકે પરમેશ્વર 13મે ગુણસ્થાન મેં હોતા હૈ. જો અરિયંત પરમાત્મા હૈ વહી પરમેશ્વર હૈ. अब गुणस्थान के हिसाब से हम समझे तो 13वें गुणस्थान प्राप्त हुए बिना किसी को परमेश्वर मानना योग्य नहीं होता। और सजीवन मूर्ति चतुर्थ गुणस्थान वाले सत्पुरुष मिले और परमेश्वर बुद्धि नहीं आए तो पहला संकेत भी नहीं होता, दूसरा तीसरा की तो बात ही नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे लिए गुणस्थान है वो तो एक समझने की चीज है, आदरने की चीज हो गई। चतुर्थ गुणस्थान वाले की पहचान हो जाए तो परमेश्वर बुद्धि हो जाए, वो बात आदरने की। मतलब वो है कि जिसको ज्ञानी की पहचान होती है उसमें परमेश्वर बुद्धि आए बिना नहीं रहती। अब गुणस्थान के हिसाब से वो बात तो लागू नहीं पड़ती, तो गुणस्थान के विषय में क्या करना है? कि गुणस्थान तो एक समझने की चीज है, क्या है समझने की चीज रहेगी वो तो कि ठीक है क्या गुणस्थान में कैसे भाव होते हैं, क्या गुणस्थान में कैसे परिणाम होते हैं, ठीक है समझ लिया। हमको कोई मतलब, हमारा मतलब तो वो है कि हमको परमेश्वर बुद्धि आई कि नहीं आई, वो ऐसे वो इसमें एक परमार्थ है। तो वो बात विद्वत्ता में नहीं बैठती। एक शिविर में गए थे तो कुछ विद्वान लोग ऐसी बात करते थे, टॉप लेवल के विद्वान थे कि देखो 13वें गुणस्थान में अरिहंत परमात्मा है, वो भी भक्ति करने योग्य है, मुनिराज भी भक्ति करने योग्य है और ज्ञानी भी भक्ति करने योग्य है, फिर भी जिसका जितना दर्जा है उतनी उसकी भक्ति करना, अगर ज्यादा भक्ति कर लोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा। वैसे भक्ति भी तोल नाप करके करना, कि चतुर्थ गुणस्थान वाले की इतनी करना, मुनिराज की उतनी करना और भगवान की अरिहंत परमात्मा की उतनी करना। क्या है कि वो गुणस्थान को समझते हैं विद्वान लोग और भक्ति को तो समझते नहीं, और मुमुक्षु भूमिका में क्या होता है पहचान होने में वो बात तो समझ में आई नहीं होती। तो ये सम्यक मिथ्यात्व को वहाँ लागू कर देते हैं अपनी कल्पना से, वो कल्पना है। इसलिए यहाँ इतनी बात रख दी है कि गुणस्थान है वो समझने के लिए कहे हुए हैं, ऐसा इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। उपशम और क्षपक ये बे जातनी श्रेणी है, वो 8वां गुणस्थान के बाद होती है, पुरुषार्थ की जाति है। उपशम में प्रत्यक्ष दर्शन नो संभव नहीं, क्षपक में है। उपशम में प्रत्यक्ष दर्शन नो संभव नहीं, एटले जे आत्मानु स्वरूप जे प्रत्यक्ष थवू जोईए ए उपशम श्रेणी वाला ने न थाय, ए प्रकार त्यां आवतो नथी। अने क्षपक श्रेणी में ए प्रकार उभो थाय छे, ए शुक्ल ध्यान नो विषय छे। प्रत्यक्ष दर्शन ना संभव ने अभावे 11મેથી જીવ પાછો વળે છે, એટલે એટલો ફોર્સ નથી આવતો। પ્રત્યક્ષતા માં જે ફોર્સ આવે એટલો ફોર્સ બીજી રીતે આવી શકે નહીં। ઉપશમ શ્રેણી બે પ્રકારે છે, એક આજ્ઞા રૂપ છે, એક માર્ગને જાણ્યા વિના સ્વાભાવિક ઉપશમ થવારૂપ, અને આજ્ઞા રૂપ પણ આજ્ઞા આરાધન સુધી પતિત થતો નથી। એ નીચેની વાત પાછી લીધી છે કે ઉપશમ ભાવે કોઈ ચાલતો હોય તો એને માર્ગને જાણ્યા વિના સ્વાભાવિક ઉપશમ થવાનું પરિણામ રહે છે, એટલે કશાય રસની મંદતા, જયારે કોઈ આજ્ઞાધીન વર્તતો હોય મુમુક્ષુ, એ નીચેની વાત છે. તો જ્યાં સુધી આજ્ઞાધીન વર્તતે ત્યાં સુધી એને વાંધો આવતો નથી, પડતો નથી. પાછળનો ઠેઠ ગયા પછી માર્ગના અજાણપણાને લીધે પડે છે, કેમ કે રોગ સંજ્ઞામાં ચાલે છે. આ નજરે જોયેલી આત્માએ અનુભવેલી વાત છે. જાતે સ્મરણ જ્ઞાન થા પૂર્વ ભાવ કે અપની કઈ બાતે અનુભવ ગોચર થી તો વાત સબ લિખ દી હૈ. કોઈ શાસ્ત્ર મેં છે મિલ જાયગી, નહીં મિલે તો કોઈ આપત્તિ નહીં, કોઈ બાદ નહીં હૈ. તીર્થંકર કે હૃદય મેં યહ બાત થી એસા હમને જાના હૈ. તો જાતે સ્મરણ મેં બહુત સી બાતે જાની હૈ, આગે ભી જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત કર ચુકે થે, પતિત ભી હુએ થે, તો કઈ બાતે જાનતે થે. સુભાષ ભાઈ કે કુછ પ્રશ્ન કે ઉત્તર લિખ દીએ, ઉતની સી બાત હૈ, ઉસમે કોઈ જ્યાદા પ્રયોજન નહીં હૈ. દસ પૂર્વધારી ઇત્યાદિકની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાની મહાવીર દેવની શિક્ષા વિશે આપે જણાવ્યું છે તે ખરું છે. એણે તો ઘણું કહ્યું હતું, પણ રહ્યું છે થોડું, અને પ્રકાશક પુરુષ ગ્રસ્તવાસમાં છે. શું કહે છે? કોઈ દસ પૂર્વધારીની આજ્ઞાનું આરાધન કરને કા મહાવીર દેવને ક્યા હૈ, એસે કોઈ બાત પડી હોગી, સુની હોગી, તો કૃપાળુદેવને લિખા કે મહાવીર ભગવાનને તો બહુત બહુત બાતે કહી હૈ. ઇસકે અલાવા ભી બહુત બાતે કહી હૈ, લેકિન વર્તમાન મેં તો કુછ બાતે રહી હૈ, કુછ બાતે વિચ્છેદ હો ગઈ હૈ. ઓર ઉસ વિષય મેં પ્રકાશ કરને વાલે પુરુષ હૈ, વો તો અભી ગ્રસ્ત અવસ્થા મેં હૈ. હમ ઉસકા પ્રકાશન કર સકતે હૈ, પ્રકાશ ડાલ સકતે હૈ કે ભગવાન મહાવીરને ક્યા કહા થા, લેકિન હમ તો અભી ગ્રસ્ત અવસ્થા મેં, બોલેંગે નહીં, વો બાત કરેંગે નહીં. ક્યો? કે કરેંગે તો લોગ શંકા કરેંગે, લોગ શંકા કરેંગે. પ્રકાશક પુરુષ ગ્રસ્ત અવસ્થા મેં હૈ, બાકી કે ગુફા મેં હૈ, ઓર કોઈ મુનિરાજ હોંગે તો તો જંગલ કી ગુફા મેં બેઠે હોંગે. વો કોઈ વર્તમાન લોગો કે પરિચય મેં આયે એસી કોઈ વર્તમાન લોગો કી યોગ્યતા દિખતી નહીં હૈ, કે વો સબો કે બીચ મેં આયે. કાંઈ એસે કોઈ એમને જાણવા, ભગવાન જાણે, બાકીના ગુફામાં છે એમ કરીને મૂકી દીધું. પછી ભૂતકાળની ગુફામાં હોય તો કહેવા માંગતા હોય તો શું ખબર છે, એ પણ એક ગુફા થઈ ગઈ ને, ન દેખાય એનું નામ ગુફા. કહેવાનો મતલબ બાકીના દેખાતા નથી, હું પ્રગટ છું તો ગ્રસ્ત અવસ્થામાં છું, બાકીના દેખાતા નથી. કોઈ કોઈ જાણે છે તો એટલું યોગ બળ નથી, કોઈ જાણે તો એને પાછું વ્યક્ત કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ, પુણ્યયોગનું બળ હોવું જોઈએ, એ નથી. આમ લોકો છે પરમ સત્યથી વંચિત રહે છે એમ કહેવું છે. કહેવાતા આધુનિક મુનિઓના સૂત્રાર્થ શ્રવણને પણ અનુકૂળ નથી. મુનિઓને શું થ લાગે, જો આપણી નિંદા કરે છે અથવા આપણને ગણતા નથી. અમે તો વેપાર ધંધો બૈરા છોકરા છોડીને બેઠા છે, એમને કાંઈ છોડવું નથી ને પાછા અમને ગણતા નથી એવું લાગે ને. કોઈ સંપ્રદાયના મુનિને મુનિ તરીકે સ્વીકારતા નહોતા, એમાંથી નીકળે. અને જો સ્વીકારતા હોત તો એમની પાસે ગયા વિના, કેમકે ઉપરની દશામાં બિરાજે છે. હા, બાત વો હૈ કે वो ऐसा कहा कि भगवान महावीर देव ने बहुत बात कही है, वर्तमान में इसमें से बहुत कम रही है, उस पर हम प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन हम तो गृहस्थ अवस्था में हैं, कुछ बात ऐसी बताएंगे तो भी लोग हमारे पे शंका करेंगे, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। और बाकी के जो बताने वाले हों कोई समाज के बीच में आते नहीं, और कोई थोड़ा बहुत समझता है तो उसकी बात स्वीकार करने का देता है, पुण्य योग उन लोगों में नहीं है। मतलब कि लोग हैं तो परमार्थ से वंचित रहता है, इसका यही कारण बन चुका है। अब जो वर्तमान में कहलाने वाले मुनिराज हैं, कैसे मैं मुनि तरीके संप्रदाय मानता है, लेकिन वास्तव में मुनि दशा है ही नहीं, आत्मा की तो दशा है ही नहीं, इसलिए कहलाने वाले आधुनिक मैंने अभी जो प्रवृत्ति करते हैं शास्त्र अनुसार नहीं करते हैं। आधुनिक मैंने क्या, पौराणिक नहीं, उसका नाम आधुनिक, मॉडर्न बुक हो आधुनिक हो, मैंने पौराणिक नहीं, जो पुराण में जो मुनिराज का स्वरूप है ऐसे नहीं है, अपनी मनमानी सब करते हैं, कोई मंत्र जंतर करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, कोई ज्योतिष करते हैं, कोई कहीं करते हैं, कोई दवाई भी देते हैं, कोई चमत्कार करते हैं, कोई वो करते हैं, कोई वैसा करते हैं, सब ऐसा चलता है। ये आधुनिक मुनि है सब, क्या है मुनि ऐसा कभी करते नहीं, अभी तो दिखने में नहीं आता। मुनिराज है वो छठे सातवें गुणस्थान में विराजते हैं, क्षण क्षण में निर्विकल्प उपयोग स्वरूप में चले जाते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं, चलते फिरते सिद्ध जैसे हैं वो, ऐसे कोई वर्तमान में है ही नहीं। वर्तमान क्या है, 500, 600, 700 साल भूतकाल में कोई ऐसे दिखने में नहीं आए, ऐसी परिस्थिति संप्रदाय की है। दिगंबर संप्रदाय की बात करता हूँ, श्वेतांबर स्थानक वासे तो मुनि कोई मुनि है ही नहीं, वो तो बात ही सब खत्म है, वो तो कल्पना करना ही बेकार है। वहाँ तो छठा सातवां क्या चतुर्थ गुणस्थान आना भी बहुत मुश्किल है, कोई आ जाए नहीं और फिर संप्रदाय का पलटा कर दे गुरुदेव के हिसाब से, जैसे कोई अलग बात है, बाकी उस संप्रदाय बुद्धि में तो चतुर्थ गुणस्थान भी नहीं आ सकता, भले लोग मुनि माने आचार्य माने, लेकिन दिगंबर में भी नहीं, ऐसी बात है। तीन प्रकार माने, उसको लिंगाभासी कहते हैं, आधुनिक को क्या कहते हैं, लिंगाभासी, लिंग का आभास हुए उसको लिंगाभासी कहते हैं। द्रविलिंग भावलिंग, द्रविलिंग में क्या है कि बाह्य आचार जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही पालन करे, लेकिन आत्मा के ऐसी अवस्था नहीं हो। पंच महाव्रत समिति गुप्ति 28 मूल गुण जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही पालन करे, वो द्रविलिंगी है, आत्मा अवस्था नहीं हो, और द्रव और भाव दोनों में मुनिपना हुए तो वो भावलिंग है। वो भावलिंग नहीं है और आचार का भी ठिकाना नहीं है, आचरण का भी, और उसमें भी गड़बड़ है, तो उसको लिंगाभासी कहते हैं, लिंग का आभास होता है, वास्तव में ऐसा द्रविलिंग भी नहीं है, ऐसी बात है। वर्तमान में वो स्थिति है, लेकिन ऐसा कहने से इन लोगों को दुख होता है, इसलिए वो बात ज़्यादा प्रचलित करने लायक नहीं है। जब उन लोगों को दुख होता है कि देखो हमने उतना त्याग कर दिया, ये लोग मानते नहीं, अपने आप को क्या समझ के बैठते हैं, क्या समझते हैं, ऐसा ही मानते हैं, तो उन लोगों को परिणाम बिगड़ते हैं, कसाई बढ़ जाती है, ऐसा हो जाता है। मिथ्यात्व का कितना लगे, मिथ्या वो बात शास्त्र में है, हमारे शास्त्र में वो बात है, प्रवचन सार पढ़ लेना कि जो वास्तव में भावलिंगी मुनि नहीं है उनको नमस्कार नहीं करना चाहिए, द्रविलिंगी है तो उनको आहार दान आदि करने की छूट है, लेकिन अगर उपदेश सुनना है तो परीक्षा करके उसका भावलिंग देख करके ही उपदेश सुनना, द्रविलिंगी का उपदेश सुनने का मनाई किया है, हाँ परिचय करने का मनाई किया है, ऐसी बात है, क्योंकि उसमें मुनि मानने से गृहित मिथ्यात्व होता है जो सबसे बड़ा पाप है। गृहित मिथ्यात्व किसको होता है, जो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, दूसरे दूसरे अन्य मत वाले हैं, सब ये दशा हो जाएगी। नहीं, परीक्षा करना चाहिए, ऐसा नहीं चले। मैंने धर्म है वो बहुत गंभीर चीज है और हल्के से लेने से नुकसान हो जाएगा, ऐसा है, अगर उसकी गंभीरता नहीं समझे तो नुकसान हो जाएगा, मुनाफा के जगह नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा, इसलिए ऐसा नहीं चलना चाहिए। शास्त्र में मनाई किया है तो हमको शास्त्र आज्ञा तोड़ करके स्वच्छंद से नहीं चलना है, हमको वो भगवान की आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है वो भगवान की आज्ञा है। यहाँ के दिगंबर संप्रदाय वाले एक भाई आए थे हमारे पास, बहुत साल पहले की बात है, बोलो कि आप दिगंबर धर्म को मानते हो, हमारे घर पे चर्चा करने को आए, मानते हैं तो फिर हमारे दिगंबर मुनि को क्यों वंदन नमस्कार नहीं करते, हम तो नहीं करते, सीधा बोला, फिर हमारे दिगंबर मुनिराज को आप क्यों वंदन नमस्कार नहीं करते। मैंने कहा आपने अपने शास्त्र पढ़े हैं क्या, तो बोले कि नहीं। मैंने कहा तो ये आपकी स्थिति तो बहुत करुणाजनक है, आपके घर में जो महान शास्त्र है वही आपने नहीं पढ़े, तो मुनि का स्वरूप तो आप जानते नहीं, और जो वास्तव में मुनि का स्वरूप नहीं है, भाई में दिखाव है, उनको मुनि मानने से कितना पाप होता है, क्या अधोगति होता है, वो भी आपको मालूम नहीं, और फिर आप हमको समझाने को आए, हमने तो आपके शास्त्र पढ़े हैं, तो आपको समझना है तो हम पढ़ा दें आपको, फिर आप वंदन नमस्कार नहीं करेंगे तो आपको आपत्ति आ जाएगी आपके समाज में। वो उठ करके चला ही गया, चर्चा करने को आए थे, चर्चा ही नहीं किया, भग गए। मनर भाई तुम्हारा मुनि महाराज बन गए, अभी आज वो मुनि हो गए, दिगंबर मुनि हो गए,
हैं
ऐसी बात है। एक दिन रात्रि हमारा घर चर्चा करो पटेल पार्क महाराज, कहीं खबर न पड़े, कहीं खबर न पड़े। ये दिगंबर लोगों की यही तो तकलीफ है, कुछ जानते तो कुछ नहीं, न शास्त्र पढ़ते हैं, न कोई समझते हैं, न कोई जानते हैं, और फिर ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। जो जो शास्त्र हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उनको वो प्रश्न करते आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते, पर खुद तो कोई समझते नहीं, ऐसी उल्टी बात चली है। कहलाने वाले आधुनिक, मैंने वर्तमान मुनियों का सूत्रार्थ, मैंने शास्त्र का अर्थ, सूत्र का अर्थ श्रवण करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को परमार्थ तो समझ में आया ही नहीं, खुद गृहित मिथ्यात्व में पड़े हैं, उस सूत्र को क्या समझाएंगे, उसके पास पारमार्थिक ज्ञान कहाँ से होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, इसलिए वो सुनने लायक है ही नहीं, सांभळवा लायक नहीं, एवी कठोर भाषा नहीं, श्रवण ने अनुकूल नहीं, ठीक, कोई सॉफ्ट लैंग्वेज वापरे, श्रवण ने अनुकूल नहीं, मैंने श्रवण की करो तो प्रतिकूल है, मैंने अर्थ है। પણ શ્રવણને અનુકૂળ નથી, શ્રવણને પણ અનુકૂળ નથી, એટલે એને સાંભળવા પણ ન જવાય એમ કે છે. સૂત્ર લેકર ઉપદેશ કરને કી આગે જરૂરત પડેગી નહીં. હમારા જ્ઞાન એસા હૈ કે હમકો શાસ્ત્ર લેકર કે પ્રવચન દેના પડે વો જરૂરત હમકો નહીં લગેગી. હમારે આત્મા મેં સે જો નિકલેગા વહી સૂત્ર બનેગા. હમકો કોઈ સૂત્ર લેકર કે બોલને કી જરૂરત નહીં પડેગી. ક્યાસ કિતની સામર્થ્ય હૈ, ઉતની શક્તિ લેકર કે બેઠે. સૂત્ર ઓર ઉનકે સભી પહેલુ જાનને મેં આયે હૈ, વો તો સબ જાનતે હૈ, સૂત્ર ભી જાનતે હૈ ઓર એક એક સૂત્ર કે સભી પહેલુ કો ભી હમ જાનતે હૈ. એક સૂત્ર કૃપાળુ દેવ હાથમાં લીએ તો એના બધા પડખે ઉપયોગ ફરી વળે, બધા પડખે. જો વિવેચન કરે તો આશ્ચર્ય થાય, એવું જ્ઞાન હતું, એવું જ્ઞાન. એ વિનંતી હૈ, વિનીત આજ્ઞાંકિત રાયચંદ એસે બાત હૈ. એસા કરકે એ સુભાગ ભાઈ કા પત્ર સમાપ્ત કિયા હૈ, એ નવમા પત્ર સમાપ્ત હુઆ. आगे 176 नंबर का पत्र है जो कल के स्वाध्याय से चालू करेंगे. यात्रा
Yeah.